मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी मैं मुख्य विषय के तहत किस पर बात करूंगा इसकी घोषणा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बातें करने के लिए मेरे पास दूसरी खबरें हैं। लेकिन मैं चाह ये रहा हूं कि कल जिसकी हमने शुरुआत की थी उस पर भी थोड़ी सी बात अगर हम कर सकें तो बेहतर होगा। तो इसलिए फिलहाल इसे ब्लैंक छोड़ते हैं और सीधे सीधे खबरों पर आते हैं। एक खबर जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह घोषणा कर दी है, या घोषणा क्या कह लीजिए, निर्णय ले लिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच वह स्वयं करेगा। और उसके लिए बकायदे उसने समिति गठित कर दी है और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। चलिए, एक बात हुई या एक घटना हो गई। क्या आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस घटना को ज्यों का त्यों पूछा जाएगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहां जो मैं बात कर रहा हूं, सच पूछिए तो वह उसी बात से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था। ज्ञान से विवेक में आपको छलांग लगानी है, या यूं कह लीजिए कि सफर तय करना है। तो यह ज्ञान है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। और डेफिनेटली उस समिति में जो होंगे वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग ही होंगे। यह एक तथ्य हो गया, एक ज्ञान हो गया। अब आप देखें कि इसमें विवेक क्या है। विवेक यह है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट का काम है? संविधान में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट यह करेगी, क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का? यह काम नहीं है। ये किस तरह का काम है? ये एक एग्जीक्यूटिव का काम है ना, यानी कि सरकार का काम है। सरकार का काम है, सरकार का काम है का मतलब है या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का काम है या ब्यूरोक्रेसी का काम है। और फिर इसमें दो एजेंसियां हैं, बिल्कुल एजेंसियां नहीं कहना चाहिए, दो सरकारें हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। अब आप इसके एंगल देखते चले, यानी डायमेंशंस देखिए, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस इस एक घटना के देखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख हैं, हालांकि केंद्र सरकार नहीं कहना चाहिए, वैसे भारत के प्रमुख हैं, लेकिन चलिए सरकार की दृष्टि से लेंगे तो डेफिनेटली वो केंद्र सरकार के प्रमुख हैं। और पंजाब सरकार अलग है, ये हमारे एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके उसकी व्यवस्था है। लेकिन इसका एक और पार्ट है, वह पार्ट क्या है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके जो अलायंस हैं, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर राजनीतिक दृष्टि से हम सीधे सीधे बात करें बोलचाल की भाषा में, तो एक दूसरे के विरोधी हैं या प्रतिपक्षी हैं, मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो ये इसका पॉलिटिकल पार्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने सुना है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आता है और रोटी खा जाता है, यह वो बात नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, या रोटी खाने की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि जो देश है, देश देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट को अब यहां इस रूप में देखने की कोशिश कीजिए, जो देश है वो न तो पंजाब सरकार की जांच पर भरोसा कर पा रहा है, उसको लगता है कि वो अपने पक्ष की बात करेगी, चूक उसी से हुई है, और वो पंजाब सरकार जिस तरह से ब्लेम कर रही है तो लग रहा है कि केंद्र सरकार भी शायद सही तरीके से जांच न कर पाए, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तो देश को यह लग रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भविष्य के लिए हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा देश इसे भुगत चुका है, महात्मा गांधी से लेकर के और अब आगे के दौर तक को देखिए, तो ऐसा नहीं है कि हम इस मामले में बिल्कुल निर्द्वंद हैं, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दायित्व तो अपने हाथों ले लिया, सरकार ने नहीं सौंपा है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने कह दिया हो या राज्य सरकार ने कह दिया हो, जनहित याचिका के तहत यह बात गई। और इसीलिए मैंने कहा कि देश ने यह जानना चाहा कि वास्तव में यह चूक कैसे हुई है, और बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले। तो आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि कैसे सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के तहत चली जा रही है, सारी बातें, नीट की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, फलाना होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि, इस तरह की घटनाएं आप देखिए, देखते चले जाइए। तो आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे कितना शक्तिशाली होता चला जा रहा है, या कह लीजिए कि उसके पास प्रशासनिक अधिकार चलते चले जा रहे हैं, और वो ले नहीं रहा है, या ध्यान देने की बात है कि वो एक्वायर नहीं कर रहा है। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां आती चली जा रही हैं, जिसको लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश नहीं है। तो दोस्तों, अब ये जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये विवेक का हिस्सा है। जब आप इस घटना पर इन बिंदुओं के आधार पर विचार करने लगते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, इत्मीनान के साथ बैठते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, तब फिर बातें स्पष्ट होती चली जाती हैं। अब जो दूसरी घटना है, घटना क्या समाचार है, एडिटोरियल कमेंट्स भी इस पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, श्रीलंका को लेकर। इस पर भी मैं विवेक की बात कर रहा हूं। श्रीलंका पर चीन का कर्ज बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। और अभी जब चीन के विदेश मंत्री श्रीलंका आए थे, तो बकायदे श्रीलंका ने कहा कि भैया कुछ राहत दो। राहत का मतलब यह है कि कुछ कन्वर्ट कर दो, सहायता मांगी, एक तरह से वित्तीय सहायता मांगी आप कह सकते हैं, ऋण संकट से निपटने के लिए। ये एक छोटी सी घटना है, ठीक है, न्यूज है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सीधे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो खबर है, ये सामान्य खबर नहीं है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मतलब यदि आप माला तैयार कर रहे हैं तो उसका बहुत महत्वपूर्ण पुष्प ये है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी जानकारी में होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस की दृष्टि से भारत श्रीलंका का पड़ोसी राष्ट्र है, और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, पहली बात। दूसरा नाम इसमें किसका है? चीन का नाम है। चीन के साथ हमारे किस तरह के संबंध है आप देखते ही, केवल हमारे साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों के साथ किस तरह के संबंध होते चले जा रहे हैं। अमेरिका के साथ तो बिल्कुल ट्रेड वार की स्थिति आ गई है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है, तो चीन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो घटना घटी वह क्यों महत्वपूर्ण है? वो घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कहीं ना कहीं श्रीलंका चीन से दबा हुआ महसूस कर रहा है, कसमसा रहा है ना, कसमसा रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, उस रूप में भले ही अच्छी बात ना हो, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रूप में आपसी संबंधों की दृष्टि से देखिए तो एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि फिर वो भारत की तरफ देखेगा। हालांकि जब आप ये एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसने बताया कि भारत से भी उसने ऋण की मांग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सके जो गलत था, करना चाहिए था। लेकिन चलिए, खैर, जब आप चीन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चीन धीरे धीरे दुनिया में अपने पैर पसारते चला जा रहा है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि खासकर ये जो लिंक रोड जो बना रहा है जगह जगह पर, जिसे आप रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उसके तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका नाम है, जिसके तहत वो करता क्या है चीन, उस देश में कहेगा कि हम ब्रिज बना देंगे, उस देश में कहेगा कि हम रेल बना देंगे, बकायदे उनको ऋण दे देगा कि ठीक है आपके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए, हम पैसा दे रहे हैं आप बनाइए। फिर पता लगा धीरे धीरे उस पर अधिकार करता चला जाएगा, उनको ऋण देगा, उस पर ब्याज लेता चला जाएगा, और वो देश धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसता चला जाएगा। ये चीन की नीति है, ये बहुत ही वेल नोन पॉलिसी है, मैं कोई नई बात आपसे नहीं बता रहा हूं। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, मतलब पाकिस्तान के तो कुछ हिस्सों में ऐसा हो गया जहां चीन की बस्तियां हो गई हैं, और वहां प्रवेश करने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, ऐसी स्थिति आ गई है। तो चीन इस बात को लेकर के आप कह लीजिए कि पूरी दुनिया में लगभग लगभग धीरे धीरे बदनाम सा होता जा रहा है, जो भारत के पक्ष में है। तो अब आप देखिए कि एक छोटी सी ये खबर है, और उस छोटी सी खबर ने आपको अपने उत्तर लिखने के लिए कितने सारे डायमेंशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस खबर को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होगा तभी जब आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, तभी आपके दिमाग में ये रच बस जाएगा। मित्रों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप याद कर करके सिविल सर्विस को क्वालिफाई कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन होगा। आपको केवल तथ्य ध्यान में रखने होते हैं, उन तथ्यों को रिवाइज करते रहना पड़ता है, और उत्तर लिखते समय उन तथ्यों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही है ज्ञान का विवेक तक विस्तार। दोस्तों, जो दो तीन और मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्रेस क्लिपिंग्स के रूप में, एक दैनिक जागरण का है, भरत झुनझुनवाला जी का, पूंजी पलायन को लेकर के, कि भारत से अब पूंजी का पलायन विदेशों को होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, उसको कारण दिए हैं कि जो रिजर्व बैंक का क्या कहना है, वो क्यों चाहती है कि ठीक है पूंजी का बिल्कुल आप यूं निर्बाध आवागमन हो, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, उसकी समीक्षा भी इन्होंने की है। इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन क्या सीधे सीधे पढ़ने से आर्टिकल समझ में आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सब आप रट सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इस आर्टिकल को आप तभी समझ सकेंगे जब आपने अर्थशास्त्र को समझ लिया हो। मैं पढ़ लिया हो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रट लिया हो की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं समझ लिया हो की बात कर रहा हूं। अगर अर्थशास्त्र की समझ आपके पास होगी तो आप मान करके चलिए कि यह आर्टिकल आपके समझ में आ गया है। और फिर इस आर्टिकल के इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, या इसी को बेस बनाकर के प्री में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उसका उत्तर दे लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह के दो एडिटोरियल कमेंट्स मैं आपको और प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बैंकों को लेकर के है कि बैंकों में जब कोई फ्रॉड होता है इस तरह के, तो तीन एजेंसियां उसकी जांच करती हैं, उनको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा कमेंट है, हो सका तो मैं आपको इसका हिंदी प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा यह है कि अभी जो हमारा चुनाव आयोग है उसने अभी चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है, जिस पर हम लोगों ने आगे बात की थी, उसको भी लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। प्लीज, मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसका कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होता है, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो क्लासेस हैं दोस्तों, 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए दुर्गावती ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दुर्गावती जी, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं अंकित राज, जो मुंबई से हैं। अंकित, जो तुमने हिस्ट्री को लेकर के और दूसरे तथ्यों को लेकर के जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगले मित्र हैं गौरव कुमार, रामनगर बिहार से, उमेश सैनी, सवाई माधोपुर राजस्थान से, श्रुति सुमन, बेगूसराय बिहार से, और प्रीति ठाकुर। प्रीति ठाकुर, आपकी मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि अभी मुख्य परीक्षा के तहत ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स हैं और जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसकी बहुत ही डिटेल जानकारी आपने भेजी है। डेफिनेटली इसके लिए समय की जरूरत होती है, और साथ ही साथ आपको बातें याद भी रखनी होती हैं जितने डिटेल्स के साथ आपने भेजा है कि किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसने बहुत ज़्यादा मदद की है। उमेश सैनी, आपने भी ऐसा किया है, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं, और सच पूछे तो इससे मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उन्होंने आप सबके अंदर जो एक क्षमता विकसित की है उसने एक चमत्कार सा करने में आप कह लीजिए कि अपनी भूमिका निभाई है। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।